हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अब जैसे ही झलक ने इस टोन में उससे बात की, अब तो सिद्धार्थ अचानक उसके करीब जाने लगा। और अचानक जैसे ही उसके चेहरे के जैसे ही वो करीब गया, सिद्धार्थ की गर्म सांसें झलक के गर्दन और उसके चेहरे पर पड़ने लगी थी। अब सिद्धार्थ के इस तरह करने पर अचानक ही झलक थोड़ा सा असहज हो गई थी। साथ सिद्धार्थ की थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो गया था। उसका हारमोनियम सिस्टम काफी ज्यादा बिगड़ गए थे। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, अगर मैंने तुम्हें दोबारा आर्यन रायचंद के साथ देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अब जैसे ही सिद्धार्थ ने ये कहा, झलक को तो ऐसा लगा उसके सामने खड़ा हुआ इंसान एकदम ही सठिया गया हो। और वो उसकी ओर देखकर तीखी आवाज में बोली, मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, ना ना ना, मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? हाँ, अगर आप कहें तो मैं आपको एक अच्छा सा हॉस्पिटल भी रेकमेंड कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि आपके इस हॉस्पिटल में शायद आपका इलाज नहीं हो पा रहा है। और एक और बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पापा यहाँ इस आपके हॉस्पिटल में हैं, तो आप मुझे आसानी से डगा धमका सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं आज के आज अपने पापा को यहाँ से किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करवा दूंगी। अचानक ही झलक को सिद्धार्थ से काफी ज्यादा घिन महसूस हो रही थी। हालांकि झलक को उस इंसान से घिन महसूस हो रही थी जो इस शहर का मोस्ट हैंडसम और बैचलर बंदा था, जिसके आसपास हमेशा खूबसूरत लड़कियों का झुंड रहा करता था। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो बार बार बदसूरत सी दिखने वाली झलक से टकरा जाता था। झलक की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखकर तेज में बोलता है, और रियली, तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपने पापा को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करवा लोगी तो तुम मुझसे बच जाओगी? अब उसकी बात सुनकर झलक ने अपनी वॉइस तेज करते हुए तिलमिलाकर बोली, ये मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। हाँ, मन में वो सोच रही थी, इस पागल आदमी ने तो उसे दुखी करके रख दिया है। तभी अचानक सिद्धार्थ ने एक कदम हल्का सा आगे बढ़ाकर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसके कॉलर को हल्के से ऊपर उठाया और सीरियस एक्सप्रेशन में बोला, तुम्हें क्या लगता है, जब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो तो जो तुम चाहे वो कर सकती हो, हैं? हालांकि उसने झलक से ये बात छुपाई थी, लेकिन वो एक महीने से उसकी जांच कर रहा था। उसे ना केवल उसने उसके पास जाने की पहल की थी, बल्कि वो उससे नफरत भी करने लगी थी। सिद्धार्थ को इस बात का पूरा यकीन था कि झलक के मन में उसके लिए किसी तरह की कोई भी फीलिंग नहीं थी, और एक महीने से वो लगातार काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका अबॉर्शन नहीं हुआ था। इसीलिए उसने सोचा कि झलक के लिए उसके बच्चे को जन्म देना कोई बुरा नहीं होगा, और वैसे भी उसकी दादी बच्चा चाहती थी, तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि झलक एक बार अगर उसके बच्चे को जन्म दे देती है तो उसके बाद वो उसे कुछ पैसे दे देगा और उसे यहाँ से चलता कर देगा। ये उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, और उसने सोचा था कि अगले कुछ दिनों में वो झलक को सारा सच बता देगा। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में आया और उसने आर्यन और झलक को साथ में देखा तो उसे बहुत ज्यादा जलन महसूस होने लगी थी। ये जलन क्यों थी वो खुद समझ नहीं पा रहा था। अब जैसे ही उसने झलक को बातें ही बातों में ये बता दिया कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, अब तो झलक का दिमाग बुरी तरह से हिल गया था। और थोड़ी देर पहले वो सिद्धार्थ के दिमाग खराब होने की बात कर रही थी, एक बार फिर बड़बड़ाने लगी, अभी तक तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात का शक था कि तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनने के बाद मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, मुझे इस बात का 100% यकीन हो गया है कि तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, बिल्कुल पागल जो उल्टी सीधी उठपटांग बातें किए जा रहे हो। अब जैसे ही झलक ने ये कहा, सिद्धार्थ के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट थी और वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ एरोगेंट वॉइस में बोला, जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, समझी तुम? तभी झलक एतराज जताते हुए बोली, तुम जानते हो भले ही मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया हो, फिर भी मैंने अपनी दवा ले ली थी। यहाँ पर सीधे सीधे झलक का मतलब सिद्धार्थ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद गर्भपात की दवाई लेने से था, लेकिन जैसे उसने सीधे सीधे सिद्धार्थ को उसके मुंह पर कुत्ता कहा तो उसका गुस्सा उसकी हद से बाहर हो चुका था। तब झलक आगे नफरत भरी आवाज में बोली, मैं कभी भी अपनी जिंदगी में खुराना परिवार के लिए किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। अब जैसे ही झलक ने बड़ी ही नफरत के साथ ये कहा, सिद्धार्थ, जो झलक के इस तरह के गुस्सा होने पर, उसे उल्टा सीधा बोलने पर काफी ज्यादा गुस्से से भर उठा था, अचानक से वो जोर से हंसने लगा था और उसके बाद वो झलक की ओर देखकर एरोगेंट वॉइस में बोला, क्या वाकई तुम्हें कभी भी कुछ फील नहीं हुआ कि तुम्हारा पीरियड्स अभी नहीं आया है? क्या तुम्हें कभी भी महसूस नहीं हुआ कि तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो? अब तो झलक पूरी तरह से सरप्राइज हो गई थी और सामने खड़े आदमी को देखकर पूरी तरह से हैरान थी। उसके सारे सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगे, क्योंकि वाकई उसे पिछले महीने से पीरियड्स नहीं आया था। आज तो उसका दिमाग पूरी तरह से हिल चुका था और वो झिझकते हुए लड़खड़ाती जुबान में बोली, तुम बेकार का ड्रामा कर रहे हो, ऑलरेडी मेरी सर्जरी यानी अबॉर्शन हो चुका है। और पीरियड्स नहीं आया तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि इस तरह की सर्जरी में हफ्ता 15 दिन या एक महीना आगे पीछे डेट हो सकती है। तभी सिद्धार्थ ने उसकी ओर शातिराना अंदाज में बोला, तुम सचमुच इतनी भोली हो या भोली होने का नाटक कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता अगर तुम्हारा अबॉर्शन होता तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो दर्द महसूस होता है, लेकिन तुम्हें क्या दर्द महसूस हुआ है? अब जैसे ही सिद्धार्थ ने एक बार फिर यही वाली बात बोली, अब तो झलक का दिमाग चकरा गया था। हाँ, ये बात सच थी कि अबॉर्शन के बाद उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन जबकि उसे बहुत पहले ही उसकी जो फ्रेंड और क्लब में काम किया करती थी प्राची, उसने बताया था कि अबॉर्शन कितना ज्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि प्राची का ऑलरेडी अबॉर्शन हो चुका था और उसे डेट भी नहीं आई थी। लेकिन तभी झलक खोई हुई आवाज में बोली, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो कल भी गर्भ निरोधक गोलियां ली थी। तब सिद्धार्थ उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या वो गोलियां एकदम गोल थीं और सफेद थीं और उनका स्वाद थोड़ा खट्टा था? अब जैसे ही झलक की बात सुनकर सिद्धार्थ ने गोलियों का विवरण दिया, तब झलक कंफ्यूज्ड होकर उसकी ओर देखकर बोली, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तब सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मैंने ही नाइट शेड क्लब से लेकर शीतल अपार्टमेंट तक सबको इस बात के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि कोई भी तुम्हें गर्भ निरोधक दवाइयां जगह सिर्फ और सिर्फ विटामिन की ही दवाइयां दी जाएं। शीतल अपार्टमेंट जिस जगह झलक रहा करती थी उसके बिल्डिंग का नाम शीतल अपार्टमेंट था। अब जैसे ही झलक ने ये सुना, उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि उसका सर पूरी तरह से घूम रहा हो और कोई लगातार उसके सर में तबला बजा रहा हो। वो चिल्लाती हुई बोली, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ कभी भी नहीं बन सकती हूँ, कभी भी नहीं, ये इम्पॉसिबल है। झलक एकदम से ही पैनिक करने लगी थी, लेकिन तभी सिद्धार्थ ने बड़े ही ठंडे लहजे में कहा, ये एक हॉस्पिटल है और तुम चाहो तो टेस्ट करवा सकती हो। तब झलक फटाक से बोली, नहीं, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर किसी तरह का कोई विश्वास नहीं है,
और वैसे भी ये खुराना अस्पताल है, यानी के इसके मालिक तुम हो, तो हो सकता है कि तुम मेरी जिंदगी में मुश्किल पैदा करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हो, और यहाँ पर सिर्फ सब लोग तुम्हारी बात सच साबित करना चाहेंगे। झलक को अभी भी लग रहा था कि सिद्धार्थ शायद उसकी जिंदगी में काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, इसीलिए वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तब सिद्धार्थ ने बड़े ही इजी तरीके से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम जाओ जहाँ तुम्हारा दिल करे।